Surat Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla amalahum. Jin logon ne kufr kiya aur Allah ke raste se roka, Allah ne inke amal ko raiga kar diya. Khatte amal. Surat Muhammad ka khaas taur pe topic hai. Amal zaya kaise hote hain? Aap sister se zyada to koi bhi isko nahi jaan sakta. Ghanta lagakar khana pakaye aur zara sa haath laga aur wo khana niche gir gaya, sara khana zaya. Phir pak jayega, lekin kitna afsos hai. Sochiye jo log duniya mein zindagi guzar kar kal Allah ke paas pahunche aur wahan jaake pata chala ke jo thode bahut amal kiye the wo bhi chale gaye. To is surat mein hum dekhenge ki kis tarah Allah taala insaan ko apne amal ki hifazat karne ki daawat dete hain. نفس سلم کے نام پر یہ صورت ہے. قرآن پاک میں 5 صورتیں انبیاء اکرام کے ناموں میں سے جس میں ایک یہ صورت ہے. اس صورت کا ایک دوسرا نام صورت قتال بھی ہے اور آج بہت شد و مد سے لوگ اس صورت کا انکار کرتے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں کچھ ایسی باتیں دیکھتی ہیں جو ان کے خیال کے مطابق قرآن میں نہیں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ بہت پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں بتا دیا کہ ایک اچھا لیڈر کس طرح سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے, اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی. دعا کر اللہ ہماری برائیاں بھی دور کر دے اور ان کا حال درست کر دیا. اے اللہ ہمارا بھی حال درست کر دے. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے, یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو, اور اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. دیکھیے یہ ہے وہ احکامات جو ہر کمانڈر اپنی فوج کو دیتا ہے. جنگ فیصلہ کن ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آدھا زخمی کر کے دوسروں کو چھوڑ دو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں جو جنگیں لگی ہیں ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں جنگ کا مقصد کفر کا سر توڑنا تھا, ٹارچر سیلوں میں رکھ کر ان کو جینے اور مرنے کے بیچ میں رکھنا نہیں تھا. تو کیا پتہ چلا کہ جب بھی کبھی کسی کا مسلمان کا کفر سے یا کفر کا اسلام سے مقابلہ ہو تو جنگ دو ٹوک ہونی چاہیے. سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دیں تب وہ کاٹتا ہے, شیر کو زخمی کریں گے پھر وہ انسانوں کو کھاتا ہے. اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ چیزیں انسانوں کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح جب ہم دشمن کو تھوڑا بہت کچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کی جنگیں مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کفر کو توڑنے کے لیے. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا, مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. ہائی لائٹ کر لیں, اللہ اپنے دین کا دفاع خود کر سکتا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو موقع دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آزمائش بھی ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا, ان کا حال درست کرے گا, ان کو اس جنت پہ داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا. انہوں نے اندیکھی جنت کے لیے کام کیے تھے, اللہ اس جنت کو ان کے لیے ایسے پیش کر دے گا جیسے اپنے گھر ہے. تو یاد رکھیے کہ جب ہم اس دنیا میں نیکیوں کو پہچان جاتے ہیں نا اور ان راستوں کو پہچان جاتے ہیں جو جنت میں لے جانے کے قابل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جنتوں کی پہچان کراتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اتنی آسانی سے اپنے گھر میں جنت میں پہنچ جائے گا جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھر میں پہنچتا ہے. خود بخود قدم وہاں جنت کی طرف لگ جائیں گے تو گویا کہ پھر جنت میں نیویگیٹرز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے اپنے گھر کے لیے تو نہیں ہے لیکن دوسرے کے گھر کے لیے, تب ضرورت نہیں پڑے گی. جنت کا نیویگیشن اس دنیا میں ہے. ایک دفعہ یہاں روٹ سیٹ کر لیجئے جنت میں جانے گا, اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے آسان کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. کیا جواب ہے آپ کا؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی مدد میں کیوں کروں, اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو لکھ لیجئے یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. دعا کرتے ہیں, کوئی نیت کرتے ہیں, اے اللہ مجھ سے اپنے دین کی کوئی خدمت لے لے. اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا؟ تمہارے قدم جما دے گا, یعنی استقامت دے گا. لکھ لیں, जितना आप अल्लाह के रास्ते में बढ़ते जाएंगे उतने आपके कदम मजबूत होते जाएंगे। अल्लाह दिलों के शक भी निकाल देता है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनके लिए हलाकत है। अल्लाह ने इनके अमाल को भटका दिया क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया। बस अल्लाह ने इनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या वो ज़मीन में चले फिरे ना थे कि इन लोगों का अंजाम देखते जिनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने इनका सब कुछ इन पर उलट दिया और ऐसे ही नतायज इन काफिरों के लिए मुकद्दर हैं। ये इसलिए है कि अल्लाह ईमान लाने वाला का हामी व नासिर है और काफियों का हामी व नासिर कोई नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये कौन सी नहरें होंगी और कौन से, अल्लाह ताला एहसास दिलाते हैं कि आज दुनिया में वो अमल करो जो नहरों की तरह बहे। ऑन गोइंग चैरिटीज, सदका जारिया के वो काम इस दुनिया में करो कि वहां जाकर तुम्हें जन्नत की नेमतें अता की जाएं। देखिए, जब एक इंसान अमल करता है ना, तो फिर उसके बाद और अमल करने का मौका मिलता है, फिर और अमल करने का मौका मिलता है, फिर और अमल करने का मौका मिलता है। फिर एक वक्त आता है कि वो नेकी इंसान का मकसद बन जाती है। इसी तरह इंसान नेकियों के सफर में आगे से आगे बढ़ता जाता है। फरमाया, वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊ नव याकुलू नकमा ताकुलुल अनाम। और कुफर करने वाले बस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं, और इनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। सच है कि नहीं? रह रहे हैं जानवरों की तरह, हिसाब देंगे इंसानों की तरह। जानवर का क्या काम है, चलते फिरते खाना, जिधर से मिला खा लिया। हलाल हराम का फर्क नहीं पता, और खा के क्या करना ये नहीं पता। खाया पिया डिकार मारा बैठ गए। बहुत सारे लोगों की जिंदगी का आज मकसद यही है, ईट ड्रिंक बी मैरी। तो अल्लाह ने इंसान की कीमती मशीनरी सिर्फ इस चीज के लिए तो नहीं बनाई थी कि हम दुनिया में जानवरों वाले काम करें। अल्लाह ने अकल दी है इंसान को, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमें अपनी जिंदगी का सही फायदा उठाने की तौफीक दे। ऐसे भी कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो आपकी इस बस्ती से बहुत ज्यादा जोरावर थी जिसने तुमको निकाल दिया। इन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई इनका बचाने वाला ना था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब अपने रब की तरफ से एक साफ और सरीह हिदायत पर हो, वो इन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए इनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया। 3 सेकंड सोचे। हिदायत पे आने वाला और हिदायत पे ना आने वाले बराबर हो सकते हैं? कोई भी बराबर इसमें से नहीं हो सकता। और जब लोग इस तरह के अमल के होते हैं तो फिर क्या होता है, वो अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार बन जाते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज जो इंसान के दीन को नुकसान देती है ना, वो ख्वाहिश है। अल्लाह ताला में ख्वाहिशों की बजाय हिदायत की पूजा करने की तौफीक दे, हिदायत के रास्तों पे जाने वाला बना दे। और परहेजगार लोग, मसलुल जन्नत इल्लती वुइदल मुत्तकून, और परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया उसकी शान तो ये है कि इसमें नहरें बह रही होंगी, निथरे हुए पानी की नहरें। सोचिए, पहली नहर पानी की, फिर ऐसे दूध की नहरें जिसके मजे में जरा फर्क ना होगा। अब आप बच्चों का ना बताइएगा कि वहां दूध की नहरें, क्योंकि हमें नहीं जाना। हाँ, क्या करें, आइसक्रीम की नहर, और वहां चॉकलेट मिले दूध की नहर है। बच्चों को तो दूध वैसे ही नहीं अच्छा लगता, तो उस दूध का नाम बदल लीजिए। और पता नहीं वो दूध कैसा होगा और कैसे हालात होंगे वहां। फरमाए, नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की जिसमें इनके लिए हर तरह के फल होंगे और इनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या भला वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है इन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, और उनको ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतें तक काट डाले। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में सिखाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है कि ये दुनिया क्या है लोगों, रेशम कीड़े का लुआब, शहद कीड़े के पेट से निकला हुआ, और मछली के पेट से निकली हुई कुछ चीजें जिसके पीछे हमारा हिसाब है। यानी दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते हो भागते हो, वहां जाके क्या होगा। और आप देखिए, यहाँ नहरों का जिक्र करके मुझे तो लगता है अल्लाह ने खूबसूरती बयान की है। आप में से किसी ने नियाग्रा फॉल अगर देखी हो तो इन आयतों पर यकीनन वही तस्वुर आता है। और रात को जब उसमें डिफरेंट लाइट्स जला देते हैं ना, तो ये 4 किस्म की नहरें हैं। तो इन नहरों को बहाने के लिए इस दुनिया में काम करना पड़ेगा। और यहाँ अबंडेंस का भी मानी है, कसरत से होगा हर चीज़ जन्नत में, ऐसी होगी स्टॉक नहीं होगी कि लिमिटेड स्टॉक नहीं होगा। पानी पता चला खत्म हो गया, आज वो आ ही नहीं रहा, चलो लाओ टैंकर लेकर आओ। कोई चीज खराब नहीं होगी, चलती ही जाएगी। असल में इशारा है मेरे आपके लिए कि दीन के सफर में चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, ताकि उस जन्नत में जाकर रुको कि जहां अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इतना कुछ तैयार किया। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर आपकी बात को सुनते हैं, फिर जब आपके पास से निकलते हैं तो इन लोगों से जिन्हें इनकी नेमत बख्शी गई पूछते हैं, अभी अभी उन्होंने क्या कहा था? यानी बात गौर से सुनते हैं कोई नहीं, फिर बाद में साथ वालों को कोनिया मार के कहते हैं अभी क्या बात हुई थी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया, और ये अपनी ख्वाहिशों के पैरोकार बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई, अल्लाह इनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता करता है। फहल यंजुरून इल्लसा, क्या बस ये लोग अब क्यामत के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? इसकी अलामतें तो आ ही चुकी हैं, फिर जब वो खुद आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रहेगा? बस ए नबी, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और माफी मांग अपने कसूरों के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को खूब जानता है और तुम्हारे ठिकाने से खूब वाकिफ है। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी गई कि आप अपने साथ दूसरों के भी गुनाहों की माफी मांगे। हाईलाइट कीजिएगा वस्तग़फिर लिज़म्बिका को। आज बहुत सारे लोग एक जुमला बोल देते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल मेरे गुनाहों को माफ करें। रसूल गुनाहों को माफ नहीं कर सकते, हाँ गुनाहों की माफी के लिए दुआ कर सकते हैं। इस्तग़फारा में टू सीख तलब पाई जाती है। तो क्या पता चला, आज जब हम अल्लाह के दीन पर चलते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दुआओं को पाते हुए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी की उम्मीद रखते हैं। इसके बाद मुनाफिकों की चंद बातें। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे हैं कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती, यानी जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए। मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल की गई जिसमें जंग का जिक्र था, तो तुमने देखा कि वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे किसी पर मौत छा गई हो। क्या पता चला कि सिर्फ आज के दौर के तोहफे नहीं है, नबी सल्लम के दौर में भी कुछ लोग थे कि जब उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत दी जाती थी तो उनको ऐसे लगता था जैसे मौत छा गई। देखिए, जुबान से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, ये छोट बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। किसी काफिर को सिखा दे वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। असल ये कि इस कलमे के तकाजों को पूरा करना। तो लिहाजा जब कभी दीन का कोई हुक्म मानना पड़े खुशी से माने। फरमाए, अफसोस है इनके हाल पर, इनकी जुबान पर है इताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, यानी मुंह से बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हम बहुत अच्छे काम करेंगे, आप कुछ करें, हम साथ हैं, हम इस काम में पढ़ेंगे, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते। तो इन्हीं के लिए यही बेहतर होता। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया? क्या इनके दिलों पर कुफल पड़े? हाईलाइट कर लें आयत नंबर 24। ये आयत हम सब से कुरान पर गौर व फिक्र करना सिखाती है, तकाजा करती इस बात का कि हम कुरान पे गौर करें। और किसी चीज पर गौर कैसे किया जाता है, कब किया जाता है? जब समझ आती है। यकीन करें 20-25 लोग भी एक रूम में हो और आप उनको थोड़ी सी तिलावत सुनाकर पूछें कि क्या समझ आया, कितना समझ आया, तो जवाब नो होता है। तदब्बुर कैसे करेंगे? इसीलिए तो फिर हम हर वक्त अपने गमों में मगन रहते हैं। कभी भी किसी को बैठा देखे वो सोच रहे परेशान है, आप कहते क्या है? आप देखिएगा वो कोई दुनियावी गम होगा, तकलीफ का होगा। कुरान समझ आए ना तो इससे एक और बहुत तब्दीली अच्छी जो अपने अंदर आती है वो क्या आती है कि अपने गम भूल जाते हैं। हर वक्त आप उस किताब की बातों में खोए रहते हैं, ये करना वो करना, उधर प्लानिंग, उधर जाना, उससे मशवरा, उससे बात, ये पढ़ना ये पढ़ाना। किसको याद रहा कि सर में दर्द था? किसको याद रहा कि पाकिस्तान में कोई खबर ऐसी सुनी थी उससे बात करनी थी? कुछ नहीं याद रखता। तो आप कह लीजिए अपने गमों से बेगम करने वाली ये किताब है। अल्लाह ताला इस किताब का गम हमारे दिलों में डाल दे और हम इस पे गौर व फिक्र करने लगे। इन्नल्लज़ी नर्तद्दू अला अदबारिहिम, हकीकत यह कि जो लोग हिदायत वाजे हो जाने के बाद इससे फिर गए, शैतान ने इस रविश को आसान बना दिया और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला इनके लिए दराज कर रखा है। इसलिए उन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज मामलों में तुम तुम्हारी मानेंगे, यानी पूरा दीन नहीं मानेंगे, बाज मानेंगे। अल्लाह इनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर इस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे? काफिर की मौत का मंजर इसके ऊपर लिख लें। जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे, ये इसीलिए होगा कि उन्होंने इस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है। काफिरों के तरीके अल्लाह को नाराज करने वाले, और उसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद न किया, इसी बिना पर इसने इनके सब आमाल जाया कर दिए। क्या पता चला, सारी जिंदगी अल्लाह के कानून तोड़ते रहे और मौत जेल की तरफ ले जाए जाने वाले कैदियों की सूरत में हुई। किसी कैदी को आप जेल में लाइए और वो जाना भी ना चाहे जेल में, तो फिर जो उसको पीछे से हंटर पड़े और उसके हाथों में हथकड़ियां हों, यही हाल उस काफिर का होगा जिसने जिंदगी भर अपनी मर्जियां कर ली और अल्लाह की बात पूरी ना की। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह इनके दिलों के खोट जाहिर नहीं करेगा? हम चाहें तो इन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और इनके चेहरों से तुम इनको पहचान लो, मगर इनके अंदाजे कलाम से तुम अंदाजा लगा ही लोगे। अल्लाह इन सब के अमल से खूब वाकिफ है। हम जरूर तुम लोगों की आजमाइश करेंगे। हाईलाइट करिएगा, अल्लाह कह रहे आजमाइश तो होगी। कैसे होगी? हम जरूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। जब नेकी का कोई काम करने लगे शायद को सोच लें। अब इसके बाद इम्तिहान होगा। इसके बाद मेरे ऊपर कोई ना कोई बात आएगी जिसके बाद अल्लाह देखेगा कि मैं जम जाती हूँ या बिखर जाती हूँ, हिल जाती हूँ कि नहीं। आपने देखा होगा कि बाज दफा जो कारपेंटर है वो टेबल जोड़ते हैं ना, तो फिर पहले जब उसको जोड़ते हैं फिर थोड़े ठोक के देखते हैं, सही लगा है, सारी टांगे सीधी लगी हैं। फिर जब वो देखते हैं ना हर चीज अपनी जगह है, फिर उसके स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको रमजान में भी असेंबल किया है इस कुरान के साथ। अभी हमारे पेज ढीले हैं, हम चाहते हैं ना कि इस कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बना लें, तो बहुत आजमाइशें आएंगी। जो अल्लाह के दीन की तरफ आए वो आजमाइशों के लिए तैयार है, और वो तो वैसे भी आएंगी। कितने खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह के रास्ते में आए। तो जब कोई इमारत बन रही होती है ना, उसको ठोक बजा के देखा जाता है, कहीं होल ना रह जाए, कहीं रुकावट ना हो, कहीं कोई गैप ना रह जाए। जब मुसलमान जम जाते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर रहमतें आनी शुरू होती हैं।